ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका आज के रविवार के कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने द्वादश महाजन हैं, 12 महाजन हैं, उनके बारे में चर्चा चालू की थी। तो पिछले हफ्ते हमने किसके बारे में चर्चा की थी? ब्रह्मा जी के बारे में। तो ये श्लोक आता है उसमें दूसरे महाजन का नाम कौन है? नारद मुनि। स्वयंभु नारद शंभु नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है ये केवल तीसरे व्यक्ति है, तीन ही व्यक्ति है भागवतम में जो भागवतम के हरेक स्कंद में आते हैं। सबसे पहले व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण, उनके बारे में बुक किताब है वो। दूसरे है ब्रह्मा जी और तीसरे है नारद मुनि। और कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है, शिव जी कुछ स्कंदों में आएंगे कुछ स्कंदों में नहीं आएंगे, पर ये नारद मुनि सब स्कंदों में आएंगे। तो हम उनके सब लीलाओं के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे जो भागवतम में है। तो ये जो प्रवचन तीन विभाग में लूंगा मैं, सबसे पहले नारद भूमि के बारे में थोड़ा परिचय पार्श्वभूमि दूंगा और फिर वो भगवान की लीलाओं में दो प्रकार से सहयोग करते हैं। एक है उनके भक्तों को मार्गदर्शन देकर और दूसरा है स्वयं भगवान की लीला में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर उपस्थित होकर और भूमिका लेकर। तो ये प्रधान रूप से हम दशम स्कंद में देखेंगे। तो सबसे पहले नारद मुनि वे अपने स्वयं के जीवन का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में और वे बताते हैं कि वास्तव में नारद मुनि के हमें तीन जन्म पता है। अलग अलग प्रकार के आत्मा होते हैं। से हम सब है चार प्रकार के प्रधान रूप से आत्मा होते हैं। एक है आत्मा नहीं लोग होते हैं, जीव होते हैं। जो है हम सब है वो मर्त्य है, यहाँ पे हम जी रहे हैं, हम सब मृत्यु के अधीन है, हम सबकी मृत्यु होने वाली है। तो मर्त्य के अलावा है दूसरे जो है अमर। जो अमर मतलब वो जिनकी मृत्यु कभी होगी नहीं, ऐसे नहीं है। अमर का अर्थ है कि वो बहुत समय तक जिएंगे। तो सब देवतागण जो है उनको अमर कहा जाता है। वो अमर मतलब कभी मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं है, पर मानव की दृष्टि से बहुत लंबा है उनका जीवन। और स्वर्ग लोकों में कभी मृत्यु नहीं होती है, स्वर्ग लोकों से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, बाद में उनकी मृत्यु होती है, तो इसलिए स्वर्ग लोक में अमर कहा जाता है। फिर तीसरे स्तर के है चिरंजीव। तो अमर जो होते हैं वो साधारणतया एक मन्वंतर जो होता है उस काल के लिए जीते हैं। तो ये मन्वंतर क्या है? माँ ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 विभाग होते हैं, तो 14 मनु होते हैं। तो चिरंजीव जो होते हैं साधारणतः इंद्र अगर होगा तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं। अलग अलग प्रकार के इंद्र होते, अलग अलग व्यक्ति, जैसे भारत का भी राज्य है, उसमें जो प्रधानमंत्री होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो प्रधानमंत्री का पद है और उसपे कोई व्यक्ति मौजूद होता है कभी कभी। तो उसी तरह से इंद्रा, चंद्रा, वायु, ये सब पद है और अलग अलग लोग, अलग अलग जीवात्मा अपने पुण्य और भक्ति के द्वारा उन पद को प्राप्त करते हैं। तो ये है अमर। अमर से ऊपर है चिरंजीव। चिरंजीव जो होते हैं, कई बार हम आशीर्वाद देते हैं तो चिरंजीवी भाव बोलते हैं, लंबे समय तक जीव से बोलते हैं। सदा भारतीय संस्कृति में पुरुषों को चिरंजीव भाव बोलते हैं, स्त्रियों को सौभाग्यवती भाव। तो वैसे आशीर्वाद दिया जाता है। तो चिरंजीव मतलब बहुत काल तक, चिरन मतलब सनातन नहीं है, बहुत काल तक। तो चिरंजीव जो होते हैं वो ब्रह्मा जी के जीवन तक जीते हैं। चिरंजीव जो होते हैं वो, उनका जीवन इंद्र से बहुत बहुत बड़ा होता है। जो ब्रह्मा जी का जितना दीर्घायु है उतना उनका आयु होता है। और उसके परे है नित्य। नित्य मतलब जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। चिरंजीव की भी मृत्यु होगी। जो ब्रह्मा जी का जब अंत हो जाएगा उनका आयु का, तभी चिरंजीव का भी अंत हो जाएगा। तो जो नित्य है वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो 4 प्रकार क्या है, हम सब कौन है, मर्त्य, उससे ऊपर है अमर, उससे ऊपर है चिरंजीव, उससे ऊपर है नित्य। तो जो नारद मुनि है, वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो हम सब नित्य है। आत्मा के स्तर पर, शरीर के स्तर पर हम सब का अंत होने वाला है, पर आत्मा के स्तर पर हम सब नित्य है। पर जो, तो जब हम जो नित्य आत्मा बोल रहे हैं वो कौन है, वो सिद्ध व्यक्ति है, सिद्ध आत्मा है, जो उसी स्तर पे हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो नारद मुनि के पिछले 2 जीवनों के बारे में भागवतम में वर्णन है और उसके बाद में वे नित्य व्यक्ति बन गए। तो नित्यत्व जो है मतलब अभी हम सब शुद्ध हो जाएंगे, भगवत धाम लौट जाएंगे, तो अभी हमारा जो शरीर है उस शरीर में हम जीवित नहीं रहेंगे, हम किसी और शरीर में हो गए आध्यात्मिक जगत में। पर जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम में लौट जाएंगे, वहां पे जो शरीर हमें मिलेगा वो शरीर नित्य रहेगा, वो हमारा स्वरूप कहलाता है। कोई गोपा हो सकता है, कोई गोपी हो सकता है, कोई धात्री हो सकते हैं भगवान के। तो अलग 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 भूमिकाओं में भक्त भगवान की सेवा करते हैं आध्यात्मिक जगत में। और हम सबका स्वरूप है। अभी जो हमारा रूप है ये पर रूप है, ये हमारा स्वयं का रूप नहीं है। पूर्व कर्म से हमको कुछ समय के लिए शरीर मिला हुआ है, पर जो स्वरूप है वो शाश्वत है। तो नारद मुनि जो है, जो उनका अभी शरीर है वो नित्य है, वो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में भागवत में वर्णन आता है कि 2 जन्म पहले नारद मुनि जो थे वे गंधर्व लोक में, गंधर्वों के प्रमुख जैसे थे, एक बहुत सुंदर नृत्य कर गीत गाते थे वो। और फिर उससे वो गर्वित हो गए, और जब गर्वित हो गए तो साधारणतया जो ऐसे वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के रूप से आकर्षित होते हैं, और स्त्रियां जो होते हैं वो पुरुष के वाणी से आकर्षित होते हैं। तो फिर नारद मुनि बहुत अच्छा गाते थे, वो नारद मुनि नहीं थे अभी वो गंधर्व थे तभी, अच्छा गाते थे। तो बहुत सी अप्सराएं उनके साथ में थी और उसके कारण वो थोड़ा उन्मत्त हो गए। और एक कार्यक्रम था जहाँ पे देवता लोक की बात है, गंधर्व लोक देवता लोक में रहते हैं, वहां पे ऐसा कार्यक्रम था जहां पे भगवान का गुणगान होना था। पर कोई व्यक्ति अगर उन्मत्त हो गया है तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी सुधी बुधी नहीं रहती। तो वहां पे जहां भगवान का गुणगान करना है वहां पे वो जो गंधर्व थे वे कुछ और ही गाने लग गए, देवी देवता का गुणगान करने है, कुछ और करने लग गए। तो जब वहां पे जो उस सभा में वरिष्ठ लोग थे उन्होंने देखा कि तुम इतने उन्मत्त हो गए हो, शाप देते हैं कि तुम्हारे उन्मत्त से मुक्त करने के लिए क्या शाप देते हैं कि तुम जो इतना सुंदर शरीर मिला है, जिस इतना अच्छा वाणी है, जिस तुम गर्वित हो गए उससे तुम मुक्त हो जाएगा, उससे तुम अपना चेतना जो है वो खो नहीं बैठोगे। और उसके बाद में अगले जन्म में नारद मुनि का जन्म एक तुच्छ परिवार में हुआ। और फिर वो जो वर्णन है पांचवें छठे अध्याय में आता है श्रीमद् भागवत के। ये जो वर्णन बताया बाद में आता है, नवे स्कंद में आता है जो मैंने बताया अभी। तो इस जन्म में नारद मुनि वास्तव में एक बहुत ही गरीब नीचे वाली जाति स्त्री के गर्भ से जन्म हुआ उनका। पर वहां पे भी जो कैसे होता है, जो पुण्य हम करते हैं वो पुण्य साथ में कभी नहीं रहता है, वो खत्म हो जाएगा। पुण्य कैसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति पैसे कमा लेता है और सोचता है कि मैं कहीं शिमला जाऊंगा, दार्जिलिंग जाऊंगा, हिल स्टेशन में थोड़ा ऐशो आराम करूंगा, तो क्या होता है, जब तक पैसा है तब तक ऐशो आराम होगा, पैसा खत्म हो जाएगा तो होटल से निकाल दिया जाएगा, वापस आना पड़ेगा। तो वैसे ही स्वर्गलोक भी वैसे ही है, जब तक पुण्य का अकाउंट में कुछ बाकी है तब तक स्वर्गलोक में भोग कर सकते हैं, जैसे पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाएगा तो निकाल देते हैं। तो इसीलिए पुण्य से जो प्राप्ति होती है वो अशाश्वत होती है। भगवान बोलते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक में भोग भी कर लिया, उसके बाद में क्या होगा, क्षीणे जब खत्म हो जाएगा पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुनः इस भौतिक जगत में आ जाएंगे, मर्त्यलोक में आ जाएंगे। तो नारद मुनि का पहले जो पहले गंधर्व बने थे तो उनका कुछ पुण्य था इसलिए स्वर्ग में गए, पर वो शाप मिल गया वहां से आ गए। पर भगवान कहते हैं कि जो पुण्य और पाप है वो अशाश्वत है, पर जो भक्ति है शाश्वत है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, बोलते हैं कि इसका न कभी नाश होता है न इसकी कभी कमतरता होती है। तो इसके कारण वहां पे गंधर्व के रूप में उन्होंने भगवान की भक्ति थोड़ी बहुत की थी, भगवान का गुणगान किया था, तो उसी प्रेरणा के कारण इस जन्म में नारद मुनि छोटे बालक थे पर वे महाभागवतों की सेवा करने लग गए। चातुर्मास के समय में जो सन्यासी गण होते हैं वो वैदिक संस्कृति में उस प्रवास नहीं करते, एक जगह पे रहते हैं। तो वैसे चातुर्मास के समय ये आए थे न्यासी और वहां पर नारद मुनि ने उनकी बहुत अच्छी तरह सेवा की अपने माता के साथ, और फिर उनको आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद से जो उनके आकर्षण था भगवान के प्रति वो जागृत हो गया, सारुचि ही जो रुचि थी पुनः आ गई। और फिर उसके बाद में जब वो महाभागवत चले गए सब, तो एक दिन अकस्मात उनकी माँ जब बाहर गई थी तो एक सांप ने उनको काट लिया और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वे छोटे 5 साल के थे, श्रीमद् भागवत में 5 साल का उम्र बहुत महत्वपूर्ण है। नारद मुनि 5 साल के थे, ध्रुव महाराज 5 साल के थे, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तो 5 साल के उम्र में बहुत कुछ हुआ है श्रीमद् भागवत में। जब 5 साल के थे तभी क्या हो गया, उनकी माँ गुजर गई और पिता नहीं थे पहले से, तो अभी अकेला बालक क्या करेंगे। पर जो बालक थे पर जो बुद्धि थी, चेतना थी बहुत उच्च, वो जानते थे कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। और उन्होंने जैसे भक्तिवेदांत जो महान भक्त थे उन्होंने बताया था कि आप जंगल में जाकर ध्यान करो, भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे ही उन्होंने किया, और जब ध्यान किया बहुत तीव्रता से, काफी समय तक ध्यान किया, और फिर वो अंदर अपने ध्यान में भगवान को देख रहे थे, और जब देख रहे तो एकाएक उनको लगा कुछ बाहर, कुछ आंखें देख बाहर, उन्होंने भगवान को देखा। बाहर देखने वाले थे वो, तो सोच रहे थे, पर अंदर से तभी दृष्टि गायब हो गई और बड़े उन्मत्त हो गए। तो जो भगवान का दर्शन है उसका जो आनंद है वह किसी भी भौतिक आनंद से उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। एक महान राम भक्त बताते हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान करना चाहते हैं, वो कहते हैं भगवान राम की आंखें इतनी सुंदर है जैसे कि, और वो सारे भौतिक जगत का विचार करते हैं क्या तुलना करेंगे, और कहते हैं भगवान के राम की आंखें इतनी सुंदर है जैसे कि भगवान राम की आंखें और कोई तुलना करने के लिए है ही नहीं। तो वास्तव में मान लीजिए हम अगर भौतिक दृष्टि से तुलना देनी है, तो अगर हम ध्यान पूर्वक मान लीजिए प्रवचन खत्म हो गया है और प्रसाद में लिया, प्रसाद में स्वादिष्ट खीर है और एक बहुत स्वादिष्ट खीर वाली हम खा रहे हैं, आंखें बंद करके चख रहे हैं और पूरा चख लेते हैं, बाद में आप प्लेट में हाथ डालते प्लेट गायब हो गई, कहाँ गया प्लेट। तो उसी तरह से ये भौतिक दृष्टि से हम बहुत छोटी सी झलक ले सकते हैं। नारद में ध्यान कर रहे थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे, और अचानक भगवान दृष्टिगोचर हो गए, दिखाई नहीं दिए, तो उद्विग्न हो गए, खड़े हो गए, इधर उधर देखने लग गए और पुनः बैठ गए, पुनः ध्यान करने का प्रयास करने लग गए। पर ध्यान करने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी कुछ प्रकट नहीं हो रहा था। और अभी तो बिल्कुल असह्य हो गए। वे सोच रहे थे कि भौतिक तो मेरे कोई रिश्तेदार है नहीं, और अगर भगवान भी दृष्टि से चले जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, तो अभी मैं क्या करूं। तो बिल्कुल असह्य भाव से वो प्रार्थना कर रहे थे, अंदर अंदर से पुकार रहे थे। और तभी उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी। वो आकाशवाणी उनसे कहा कि जो व्यक्ति अभी तक जिसने पर्याप्त सेवा नहीं की है और पर्याप्त शुद्धिकरण नहीं किया है, वह मेरा दर्शन नहीं कर सकता। दो चीजें, सेवा और शुद्धिकरण। तो हम सेवा बाह्य रूप से करते हैं, शुद्धिकरण अंदर से करते हैं। तो पर्याप्त सेवा और पर्याप्त शुद्धिकरण नहीं किया है, वो मेरा दर्शन नहीं कर सकते। जो मेरा एक बार तुमको दर्शन दिया मैंने, वो किस लिए दिया? जिससे कि तुम्हारी उत्कंठा बढ़े। और इस वहां पे भगवान कहते हैं बहुत सुंदर कि अगर तुम्हारी मेरे लिए उत्कंठा रहेगी, तो इस उत्कंठा से आपकी सारी भौतिक तृष्णाएं खत्म हो जाएगी, और इसी तरह से तुम मेरी भक्ति करते रहो और जीवन के अंत में तुम्हें मेरा दर्शन मिल जाएगा। तो जब ये आवाज बंद हो गया, तो भागवत में वर्णन के नारद मुनि ने प्रणाम किया उस दिशा में। वास्तव में भगवान सर्वव्यापी है, पर जिस दिशा से आवाज आया था, उस दिशा से उनको भगवान कहा कि भगवान ने गुरु के रूप में इस दिशा से ध्यान, इस दिशा से ज्ञान दिया है, तो इसलिए उस दिशा की ओर प्रणाम किया उन्होंने और पुनः ध्यान पूर्वक भक्ति करने लग गए। और फिर ऐसे बताया गया है कि वो सारा जीवन उन्होंने भगवान की भक्ति और सेवा में गुजारा, शुद्धिकरण किया। और फिर जैसे आसमान में जैसे ही बिजली कड़कते बादल गड़कते हैं, तो उसके साथ साथ बिजली चमकती है। तो वैसे ही बताया गया कि एक क्षण में जैसे उन्होंने शरीर त्याग दिया, उसी क्षण में उनको अगला शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो यह बहुत अद्वितीय है। साधारणतः जब आत्मा शुद्ध होता है, तो वेदांत सूत्र में वर्णन है कि जो आत्मा होता है वह भौतिक जग मृत्युलोक से स्वर्गलोक की ओर जाता है, और स्वर्गलोक में जो प्रलोभन होते हैं, वो प्रलोभन से उसको और आत्मा को परीक्षित किया जाता है। क्या तुम्हें सबको भोग करना है? अगर भोग करना है तो यहीं पे रहो, नहीं करना है तो आगे चलो। तो इस तरह से होता है। तो क्या क्यों उसको स्वर्ग में लिया जाता है? क्योंकि अगर उसने कुछ पुण्य किए हैं, तो पुण्य के फल के रूप में स्वर्ग में जाना पड़ता है। पर अगर वो स्वर्ग के भोग को ना बोल देता है, तो मतलब क्या है कि मैं पुण्य का फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति करके भगवान चाहिए मुझे। तो इस पर नारद मुनि को उसी समय में शरीर मिल गया। और जो हम सब ने चित्र देखे हैं नारद मुनि के, वो अभी उनके तीसरे जन्म का है। तो इस समय वे ब्रह्मा जी के पुत्र में के रूप में जन्म हुआ। पर उनकी अद्भुत बात यह है कि यद्यपि वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर इस शरीर में वे अमर है, वे नित्य है। अमर भी, अमर एक जनरल कैटेगरी हो गया, नित्य है वो। ब्रह्मा जी स्वयं नित्य नहीं है, पर नारद मुनि नित्य है। तो जिस रूप में हम देखते हैं उनके हाथ में वीणा है और भगवान का गीत गा रहे हैं, तो यही उनका शाश्वत स्वरूप है। और उनकी विशेषता क्या है कि वे जहां भी चाहे वहां पर जा सकते हैं। वो अभी वैज्ञानिक लोग बड़े बड़ा संशोधन करके फिर कुछ ऐसा जहाज बनाते जिससे कि वो अंतरिक्ष में जा सके, पर नारद मुनि को भगवान ने ऐसी सिद्धि दी है कि जहां भी चाहे जब भी चाहे वो जा सकते हैं। तो देवताओं के पास भी इस प्रकार की थोड़ी सिद्धि होती है, देवता भी आ सकते हैं पृथ्वी पे, कहीं और जा सकते हैं। पर नारद मुनि न केवल स्वर्ग तक जा सकते हैं, न केवल सत्य लोग ब्रह्मा जी के लोग जा सकते हैं, पर सीधा वो वैकुंठ में जा सकते हैं। जो देवताएं हैं वह ब्रह्मा जी के लोग तो जा सकते हैं, ये भौतिक जगत है उसके परे वैकुंठ है, नारद मुनि वहां तक जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं नारद मुनि के वर्णन में कि भक्त जो होता है जब शुद्ध हो जाता है, जब हम नियम पालन करना होता है, तो लगता है कि इतना बंधन है, ये मत करो, वो मत करो, मत करो। पर वास्तव में अगर हम भक्ति करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो सर्वोच्च स्वतंत्रता मिल जाती है। नारद मुनि उनको कोई हवाई जहाज की जरूरत नहीं, जहां भी चाहे तुरंत जा सकते हैं। तो रामायण जो है, रामायण के अनेक कहानियां हैं, तो रामलीला का अनेक पुराणों में वर्णन है। तो एक पुराण में वर्णन आता है कि कैसे एक बार रावण और नारद मुनि इन में कुछ उनकी मुलाकात हुई। तो रावण जा रहे ब्रह्मांड में जा रहा था, और सबको जीतने का, सबको हरा रहा था। और जब वो जा रहा था इस तरह से पृथ्वी लोक में, उसने उद्वंस कर दिया, जो प्रभु अयोध्या के राजा थे अनरण्य पुरुष रामचंद्र के पूर्वज थे, उनको मार डाला। और जहां भी जा रहा था उद्वंस कर रहा था, तो नारद ने सोचा कि इसको इतना उद्वंस कर रहा है, इसको थोड़ा रोकना चाहिए। तो नारद मुनि वे एक तरह से ब्राह्मण के रूप में कार्य करते, इसलिए वो शस्त्र उठाते नहीं है। तो जब नारद मुनि को देखा रावण ने, रावण ने देखा, रावण जब भी कोई ब्राह्मण को देखा तो क्या करता था, वो राक्षस था। तो राक्षस क्या होते हैं, शाकाहार तो छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, वो मानव आहार करते हैं। राक्षस होते मानव आहार, मानव को खा लेते हैं। तो नारद मुनि तो उसको जो है ऋषि मुनियों से बात करने में कोई रुचि नहीं होती थी, तो उसने सोचा कि कौन आ रहा है, इसको मैं मार डालूंगा। तो फिर उन्होंने अपना तीर उठाया और नारद मुनि की ओर तीर मारा, और नारद मुनि नारायण नारायण बोल रहे थे, और सारा जो तीर था उनके शरीर में चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। एक और तीर मारा, कुछ भी नहीं हुआ। अपना और शक्तिशाली तीर ले रहे थे, सब मार रहे थे, और फिर एक भी तीर से कुछ भी प्रवाह नहीं हुआ। तो जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनको अलग अलग प्रकार से आकर्षित करना पड़ता है। तो नारद जानते थे कि रावण को उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं होगा, तो इसलिए उसकी दृष्टि से उनको दिखा दिया उन्होंने। तो नारद जब सारे तीर उसके व्यर्थ हो गए, तो रावण ने अपने तीर बाजू को रख दिया, नारद मुनि आओ यहाँ पे बैठो। तो अभी तो तीर मार रहा था, अभी बोला आओ बैठो। और फिर बैठो, नारद मुनि शांत थे, संतुष्ट थे, बोले हाँ बोलो। बोले मुझे एक बात बताओ कि मैं ये तीर मार रहा हूँ, किसी भी तीर का आपको प्रभाव कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा शरीर नित्य है, मेरी मृत्यु नहीं हो, मेरा शरीर नित्य है बोलते। तो रावण बोला मुझे भी ऐसा ही शरीर चाहिए, तो क्या आप बता सकते हो कैसे प्राप्त कर सकता हूं मैं? हाँ कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने अपनी जपमाला दिखाई, बोले नारायण 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 जप करो, तुमको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। ये नहीं चाहिए मुझे, बोले मुझे और मार्ग चाहिए, मुझे नारायण की भक्ति करके नहीं चाहिए अमरत्व, जो कोई और मार्ग बताओ। अरे नहीं, उसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है, ठीक है। फिर मैं फिर जो भी मुझे मार सकते हैं उन सबको मैं मार डालूंगा, फिर कोई मेरी मृत्यु नहीं कर पाएगा। फिर वो नारायण ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सारे ब्रह्मांड में सबको जो भी प्रतिद्वंदी उनको मारने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मृत्यु जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे तुम क्यों युद्ध कर रहे हो? पृथ्वी के जो लोक है वो तो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम सही में अमर हो जाते हो और अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हो, तो तुम एक चीज करो, जो व्यक्ति सबको मार डालता है उसको ही मार डालो, फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो कौन व्यक्ति सबको मार डालता है? यमराज। तो तुम यमराज भी जाके आक्रमण करो। तो रावण हाँ गुड आइडिया, थैंक यू। अच्छा अच्छा सुझाव दिया बोले वो। और फिर नारद मुनि को उन्होंने विदा कर दिया, और फिर रावण चले गए, कहाँ गए? यमलोक, यमपुरी चले गए। तो रावण क्यों उधर गया? सोचा था कि यमराज को मार डालूंगा तो क्या होगा, मैं अमर बन जाऊंगा। तो फिर नारद मुनि कई बार ऐसे करते हैं कि जो असुर होते हैं वो उनको कभी कभी लगता है कि असुरी प्रवृत्ति पे और प्रवृत्त कर देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में वर्णन आता है कि जब देवकी के गर्भ से पहला पुत्र जन्मता है, उसका नाम होता है कीर्तिराज। जब वो जन्म होता है उसका, तो फिर वसुदेव जो होते हैं, वसुदेव ने कंस को वचन दिया होता है कि देवकी के पुत्र से तुमको खतरा है, तो मैं देवकी के पुत्र को तुम्हारे पास लाके सौंप दूंगा। तो फिर वो आके सौंप देते हैं उनको। तो फिर कंस कहता है कि वास्तव में देवकी के आठवें पुत्र से मुझे खतरा है, पहले पुत्र से कोई खतरा नहीं, इसको तुम ले जाओ वापस, तुम्हारे जो वचन निष्ठता है उसमें वो प्रसन्न हो गया। तो वसुदेव जाते हैं, तभी क्या होता है, नारद मुनि वहां पे आते हैं। नारद मुनि अभी कैसे होता है, कंस जानता है कि ये नारद मुनि ऋषि है, पर नारद मुनि जो होते हैं उनका वर्ताव ऐसे होता है कि सबको प्रिय होते हैं, धीरा धीर जन प्रिय, सबको प्रिय होते हैं। तो फिर वो नारद मुनि का आदर करते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं कि मैं आपको कुछ मैं अभी स्वर्गलोक में था और मैंने वहां पे कुछ बातचीत सुनी है। ओ मैं तुमको एक जासूस के रूप में कुछ खबर देने आया हूं। तो क्या बात है? बोले कि सारे देवतागण जो है तुम्हारे मृत्यु के लिए योजना बना रहे, तुम्हें मारने के लिए योजना बना रहे, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वे सब यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं, और जो विष्णु है वो भी यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं, और फिर वो तुम्हारा साथ में मिलकर वध करेंगे। बोले हाँ मैं जानता हूं ये आकाशवाणी हुई थी, पर देवकी का आठवां गर्भ है। तो नारद मुनि क्या करते हैं, एक कमल का पुष्प निकालते हैं, और कमल के पुष्प के आठ व्हाट इज पेटल्स पकौड़िया होते हैं, और वो कहते हैं इसमें से पहला कौन सा है, आठवां कौन सा है। वो कम से देखने लगता है, पता नहीं, देखो विष्णु जो है बड़ा धूर्त है, आठवां बोलेगा पहला आ जाएगा। तो कम सोचते हैं, हाँ बड़ी बुद्धिमत्ता की बात की आपने, बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर बाद में वो क्या करता है, वो देवकी के सब पुत्रों को मारने का प्रयास करता है। तो फिर लगा कि कम से कम और बुरे मार्ग की ओर क्यों उकसाते हैं। नारद मुनि का भाव क्या होता है, दोनों लीलाओं में, एक रामलीला में एक कृष्ण लीला में, नारद मुनि क्या करते हैं कभी कभी असुरों को उनको और असुरी प्रवृत्ति की ओर उकसाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, उससे उनके पाप का घड़ा और बढ़ जाएगा तेजी से। और जब इस भौतिक जगत में अत्याचार बढ़ जाता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि उनका इतना उत्साह होता कि भगवान कब प्रकट होगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे आतंक करें ताकि भगवान जल्दी आ जाए। जो नारद मुनि है भगवान उनको डायरेक्टली उनके हृदय से प्रेरणा दे रहे हैं। और वास्तव में ऐसे नहीं है कि अगर नारद मुनि सुझाव नहीं देते तो कम से वो नहीं करता, रावण नहीं करता ऐसे। रावण अपने ही धूर्तता से सोचता था कि बाद में मैं यम को यमराज को जाके मारूंगा। और कंस के पास भी बहुत से ऐसे उसके सहयोगी थे, मित्र थे, जो उसको ऐसा सुझाव दे देते थे। पर नारद मुनि क्या दिखाते हैं यहाँ पे कि जो भक्त होते हैं वो भगवान के आने के लिए इतना उतावले रहते हैं, उसके लिए बहुत उत्साही रहते हैं। तो वो भाव हमें यहाँ से देखना चाहिए। और फिर नारद मुनि भगवान की लीला में प्रधान रूप से जो सहयोग करते हैं वो क्या है, अलग अलग भगवान भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। तो हम दो प्रमुख लीलाएं देखेंगे। लीला आपको पता है अधिकांश रूप से, पर यहाँ पे हम नारद मुनि की भूमिका पर जोर देंगे। तो हम जानते हैं चौथे स्कंद में और सातवें स्कंद में दो लीला आती है। चौथे स्कंद में आते हैं ध्रुव महाराज की लीला और सातवें स्कंद में आती है प्रहलाद महाराज की लीला। तो दोनों को नारद मुनि गुरु के रूप में मार्गदर्शन देते हैं, पर दोनों में बहुत फर्क है, और दोनों को जिस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं उसमें भी फर्क है। तो जब ध्रुव महाराज छोटे बालक होते हैं, उदय महाराज नहीं होते, बालक ध्रुव होते हैं, तभी उनकी सौतेली माँ उनका अपमान कर देती है, और उनके जो पिता होते हैं वो शांत रहते हैं। तभी उसके कारण ध्रुव महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और उनकी जो माँ होती है सुनीति के पास जाते हैं और रोते रोते जाते हैं। सुनीति कहते हैं कि कोई भी आपके दुख का निवारण नहीं कर सकता है केवल एक व्यक्ति छोड़ के, वो है भगवान श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि आप जो है, आपके पिता है महाराज उत्तनपाद, उनके पिता है स्वयंभू मनु, उनके पिता है ब्रह्मा जी। और कहते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी भी अज्ञान में थे और उनको ज्ञान दिया भगवान ने, स्वयंभू मनु उनको भी ज्ञान दिया भगवान ने, इसीलिए आप भी इसी कुल में आ रहे हो, आप जाओ। तो वास्तव में जो नारद मुनि है वो ध्रुव महाराज रिश्तेदार है। कैसे, क्या नारद मुनि जो है वो एक तरह से ध्रुव महाराज के दादा के समान है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र है स्वयंभू मनु, उनके पुत्र है उत्तानपाद, और उनके तीसरी पीढ़ी में है ध्रुव महाराज। ब्रह्मा जी के दूसरे एक पुत्र है नारद मुनि, तो मतलब वे उनके दादा के भाई हो गए। तो उन्होंने पहले से सुना था कि नारद मुनि के बारे में कथा सुना थी, तो सोचे थे कि मैं जंगल में जाऊंगा और मैं नारद मुनि को ढूंढूंगा। वो पहले ही सोचे थे मैं भगवान को ढूंढूंगा, पर भगवान कहाँ मिलेंगे पता नहीं, तो से कि जंगल में ऋषिगण रहते हैं उनको मैं जाके पूछूंगा, उनको जाके पूछूंगा और फिर उनसे पता करूंगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो जब जंगल में चले गए वे, तो नारद मुनि यद्यपि वे सर्वज्ञ नहीं हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी एक तरह से सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के लिए सर्वज्ञ हैं, यमराज मर्त्यलोक के लिए सर्वज्ञ हैं, क्योंकि यमराज जो होते हैं उनको ये जो भौतिक जगत है मर्त्यलोक उसमें जो पाप करते उनका ज्ञान रखना होता है, तो इसलिए वो इस भौतिक जगत के मर्त्यलोक में सर्वज्ञ हैं। पर नारद मुनि की सर्वज्ञता उस तरह से नहीं है, पर जहां पे भी जरूरत पड़ती है भगवान को प्रेरणा देते हैं। तो फिर नारद मुनि बराबर जंगल के मार्ग में जहां पे ध्रुव जा रहे थे, तो ध्रुव महाराज जब जंगल से अपने राज्य से निकले तो एक दिशा में चले गए, पर वो जानते थे कि उनके पिताजी आके उनको ढूंढेंगे, तो इसीलिए वो जाना था उनको उत्तर की ओर, पर पहले गए वो दक्षिण की ओर, क्योंकि उनको जो कोई लोग पूछेगा पुत्र कहाँ गया है, तो फिर वो सब जो सैनिक उनको ढूंढने जाएंगे तो दक्षिण में जाएंगे, पर दक्षिण में गए और फिर बाद में वो दिशा बदल के वो उत्तर में चले गए, और उत्तर में जब गए तो वे मधुवन के ओर जा रहे थे वृंदावन में, पर वहां पे पता नहीं था उन्हें कहाँ जाना है, तो मधुवन के पास में ही उनको एक बहुत ही आकर्षक प्रकार के व्यक्ति दिख गए, और उस व्यक्ति के हाथ में एक सुंदर कोई संगीत का वाद्य था, और वो वह बालक तुम कहाँ जा रहे हो, अभी ध्रुव महाराज ध्रुव ने तब तक कभी नारद मुनि को देखा नहीं था, तो सोचे नारद मुनि एक ऋषि है और वो मेरे दादा है, तो सोचे कि वो बड़े बूढ़े हो गए, पर इसीलिए उन्होंने पहले देखा तो समझा नहीं कि नारद मुनि है, नारद मुनि ही थे वे, देखिए तुम कौन हो, देखिए मैं ध्रुव हूँ, मैं महारुसान माथ का पुत्र हूँ, तुम जंगल में क्या कर रहे हो, कि मैं जंगल में कृष्ण को ढूंढने आया हूँ, भगवान को ढूंढने आया हूँ। अच्छा भगवान कहाँ मिलते हैं ये पता नहीं है, तो ढूंढोगे कैसे आप, मैं जानता हूँ कि जो जंगल में ऋषिगण रहते हैं उनको पता है। अच्छा ठीक है, पर जंगल में तो इतने सारे ऋषिगण हो गए, आप किससे पूछोगे, बोलते हैं कि एक ऋषि है नारद नाम के, मैं उनसे पूछूंगा, ये तो उनसे मिलेंगे तो आप क्या पूछोगे, लेकिन मैं भगवान कहाँ है मुझे बताओ, तो भगवान आपको क्यों बताया करना है, कि मुझे मुझे मेरे पिता से और बड़ा राज्य चाहिए, तो बोलते हैं कि वास्तव में दो समस्या है इसमें, नारद ने अब तक बताया नहीं है कि मैं नारद हूं, तो पहली समस्या ये है कि तुम्हारे पिता इस सारे पृथ्वी के राजा हैं, अगर तुम्हें उनसे बड़ा राज्य चाहिए तो फिर उनसे बड़ा तो कौन है, स्वयं वो मनु है, उनका सारे विश्व पे राज्य है, उनसे बड़े हैं ब्रह्मा जी, तो नारद मुनि कहते हैं, कधु कहते हैं कि हमारे कुल में जिसका भी इतना बड़ा राज्य होगा उससे बड़ा मुझे राज्य चाहिए, तो कहते हैं कि अगर तुमको इतना बड़ा राज्य चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पिता को अपने दादा को अपने परदादा को मतलब उत्थानपाद को स्वयंभू मनु को और ब्रह्मा जी को सबको उनके पद से निकाल देना पड़ेगा और फिर उनके पद पे राजा लेना पड़ेगा, तो क्या आप सबको उनका राज्य से छीनना चाहते हो, तो नहीं नहीं मुझे अपना राज्य जो है पर उनका राज्य छीनना नहीं है मुझे, तो ये कैसे संभव है, ना ध्रुव सोचते हैं कहते हैं कि ये मेरी समस्या नहीं है कृष्ण की समस्या है कि कृष्ण पता कर लेंगे, तो भगवान कृष्ण बाद में क्या करते हैं एक विशेष ध्रुव लोक बना देते हैं, जो क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत का विभाग है इसीलिए वो ब्रह्मा जी के राज्य से भी ऊंचा माना जाता है, और वो विस्तारित है, वो बोलते हैं तो उनकी श्रद्धा ये है कि मेरी समस्या नहीं, ये समस्या का हल कैसे करना, वो समस्या का हल कैसे करना ये भगवान की समस्या है, मेरी समस्या क्या है भगवान की भक्ति करना। कभी कभी जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कहते हैं कि ये समस्या है इसका आप हल कर दो, और न केवल हम हल कर दो कहते हैं, हम उनको बताते भी है कैसे हल करना है कि ये ऐसे करके हल करो, हम एक्चुअली जब भगवान के साथ प्रार्थना करने जाते हैं तो कभी कभी हम डॉक्टर को भगवान से ज्यादा आदर देते हैं, क्यों, डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर को हम बोलते समस्या क्या है आप हल क्या है बताओ, पर जब हम भगवान के पास जाते हैं भगवान को बोलते हैं ये समस्या है और ये हल है आप इसको सुलझाओ इस तरह से, तो क्या होता है जब इस भाव से हम भगवान के पास जाते हैं तो मतलब क्या है कि हमें भगवान में आधी श्रद्धा है, आधी श्रद्धा मतलब क्या, हमें भगवान की शक्ति में श्रद्धा है पर भगवान के बुद्धि में श्रद्धा नहीं है, मतलब हम सोचते हैं कि ये समस्या का हल करने की शक्ति मुझ में नहीं है, भगवान में, भगवान की शक्ति है, पर ये समस्या का हल कैसे करना है इसकी बुद्धि भगवान के पास नहीं है, मेरे पास है। तो इसीलिए मैं भगवान को बताऊंगा, भगवान ये ऐसे करना है और आप, आपकी शक्ति इस्तेमाल करके मेरी बुद्धि से जो हल निकाला है वो हल आप उसको इंप्लीमेंट करो, आपको उसको लगाओ। तो क्या होता है, हमारे भगवान की न केवल शक्ति हमसे ज्यादा है, बुद्धि भी हमसे ज्यादा है। तो इसीलिए हम जब भगवान के पास जाते हैं, अ प्रेयर इज नॉट अ प्रेस्क्रिप्शन, कि जब हम प्रार्थना लेके जाते हैं तो प्रार्थना मतलब ये निवेदन है, यह कोई आदेश नहीं है। हम हाँ, ये भगवान मेरे हृदय में, मेरे जीवन में समस्या है, आप मुझे मार्गदर्शन दो कि इसका मैं क्या करूं इसके लिए, और जो आपका हल है वह मुझे समझ के उसको अमल करने में मुझे मदद करूं। तो जो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, ये समस्या का हल कैसे होगा मुझे पता नहीं है, पर ये मेरी इच्छा, ये मेरी समस्या। तो हम देखते प्रसन्न हो जाते हैं कि श्रद्धा भगवान में बहुत है, और फिर वो कहते हैं ठीक है। दूसरी समस्या यह है कि वो कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, आसानी से प्राप्त नहीं होते वो। कोई बात नहीं, बोलते जितनी भी समस्या है मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूं। तो नारद मुनि एक और परीक्षा देते हैं, क्या कहते हैं, वास्तव में अभी तो तुम छोटे बालक हो, तो छोटे छोटे बालक कैसे होता है, अगर छोटे बालक खेल रहे होते हैं तो खेलने में झगड़ा हो जाता है, वो क्या कहते हैं, कट्टी मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगा। पर क्या होता है, दो तीन दिन में देखते दोनों आपस खेल रहे होते, तो छोटे बालक की भावनाएं होती है वो क्षणभंगुर होती है, आज झगड़ा कर लेते हैं कल मैत्री कर लेते हैं। तो कहते अभी तुम छोटे बालक ही हो, कहते मैं बालक, तो ये जो भावनाएं हैं, आज तुम अपने पिता से क्रोधित हो गए हो, कल आपके अपने पिता के गोद में बैठोगे तुम खेल रहे होगे, तो इतना उसको कुछ आप गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और नारद भी बड़े बुद्धिमान है, देखते हैं ध्रुव के चेहरे के, कहते हैं साधारण तो कैसे होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं कि वो सोचते नहीं है कि मैं वृद्ध हूं, और छोटा बालक होते हैं सोचते कि मैं छोटा हूं, सब सोचते हैं कि मैं वृद्ध होते हैं वो सोचते हैं मैं नौजवान हूँ, छोटे बालक होते सोचते कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तो नारद मुनि बड़े बुद्धिमान है, तो उसे कहते हैं ध्रुव से कि अगर तुम सोचते हो कि तुम बालक नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम बड़े हो गए हो, तो अगर तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि वास्तव में इस भौतिक जगत में आदर अनादर है यह सब क्षणभंगुर है, और इनके तुम्हें परे चला जाना चाहिए। तो इस भौतिक जगत की जो भावनाएं हैं, अगर तुम छोटे हो तो उसको गंभीरता से मत लो, तुम बड़े हो तो भी गंभीरता से मत लो, तो क्या करो तुम घर चले जाओ। तो अभी इस तरह से अगर कोई बोलता है, क्या दोनों तरह से नारद मुनि बोले गए, तो नारद मुनि को एक तरह से चेकमेट कर दिया है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपने जो बात कही है वो सत्य है, पर मैं आप जो दो स्तर बताया है उसके बीच वाले स्तर में हूं, मैं छोटा बालक नहीं हूं, मेरे भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कुछ क्षण में चले ही जाएगी, और मैं इतना भी प्रगतिशील नहीं हूं कि मैं सारे इस भौतिक जगत के सुख दुख से परे जा सकता हूं। जो मेरे हृदय में आप जो स्तर बता रहे हैं वो शुद्धिकरण का स्तर है, मैं भविष्य में प्राप्त करूंगा, अभी मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता। अभी जो मेरा अपमान हुआ है उस अपमान का मुझे एक तरह से जवाब देना है, और जवाब मुझे देना है मेरे पिता से और बड़ा राज्य प्राप्त करके, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताओ। और जब इसे सुनते हैं तो तुम्हें किससे मिलना है, बोलते हैं कि मुझे नारद मुनि से मिलना है, तो बोलते मैं नारद मुनि हूँ। तो ध्रुवाश्चर्य, आप नारद मुनि है, आप तो इतने नौजवान हो, बोलते हैं कि मेरा आध्यात्मिक शरीर है इसीलिए मैं हमेशा युवा रहता हूँ, तो कृपया आप मुझे बताओ कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे मुझे। फिर वो उनको बताते हैं कि आप जो वृंदावन मधुवन है वहां पे जाओ और वहां पे भगवान के विग्रह बनाओ, वहीं के मिट्टी से विग्रह बनाओ और उन पे ध्यान करो, तपस्या करो, और जो मंत्र है सतयुग की कहानी है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र का आप जप करो। इससे क्या होगा, इससे आपकी भगवान को प्रसन्न करोगे। तो यहाँ पे हम नारद मुनि देखते हैं कि जब आध्यात्मिक मार्ग को चलता है तो सहायता भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं, दोनों हैं। तो ये गुरु की भूमिका होती है, दोनों करते हैं, सहायता भी देते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। और प्रभुपाद जी के जीवन में हम यही देखते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो बहुत से ऐसे लोग हुआ करते थे, वो कहते थे कि खुद को भगवान कहलाते, गुरु ही भगवान है, मैं भगवान का अवतार। और प्रभुपाद जी बार बार बता रहे थे जो कहते हैं कि आई एम गॉड ही इज डॉग, जो कहता है कि मैं भगवान हूँ, वास्तव में उसकी मानसिकता है वो एक जानवर की मानसिकता के समान है। और फिर बाद में ये 1965 1966 इन दोनों सालों में प्रभुपाद जी ने बहुत बार शिक्षा दी ऐसी। और बाद में पहले दीक्षा का समारोह हुआ अमेरिका में, तो वो तभी जो दीक्षा हुई तो उसके पहले एक वैदिक यज्ञ करके अमेरिका किसी शहर में कोई दीक्षा का ऐसा उत्सव कभी हुआ ही नहीं था। तो पहली बार जब दीक्षा हुई तो वहाँ पे ऐसा कोई मंदिर और उसमें यज्ञ की जगह नहीं थी, तो जो मंदिर था अमेरिका में वो एक स्टोर फ्रंट था। स्टोर फ्रंट मतलब एक दुकान का अगला भाग था, और वो उसमें बिल्डिंग थी और बहुत से अलग लोग भी रह रहे थे। तो क्या हुआ, जब यज्ञ चालू हो गया तो यज्ञ से अग्नि हुई, अग्नि से धुआं आया, और जब धुआं सब वो कमरे के खिड़कियों से बाहर निकलने लग गया तो क्या हो गया, वो जो पड़ोसी थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया और फायर ब्रिगेड वहां पे आ गए, इस घर में आग लग गई, आग लग गई है। तो दीक्षा चल रही थी, फायर ब्रिगेड वहां पे आ गई, आग लग गई है, हमने ही लगाई आग, क्या बोल रहे हम ही उसमें घी भी डाल रहे आग बढ़ाने के लिए। तो तभी वो जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही भक्तों के लिए बहुत ही दिलचस्प बात थी, न कि भक्तों के लिए बाकी सबके लिए क्या हो रहा है ये। तो फिर प्रभुपाद जी बताया मैं अभी दीक्षा का समारोह करने वाला हूँ, अगले दिन कल होगा। तो दीक्षा का मतलब क्या है, दीक्षा का मतलब है कि जो शिष्य होता है गुरु को भगवान के जैसे स्वीकार करने का व्रत लेता है। तो जब सुना उन्होंने तो एक से बॉम्ब जैसे उन पर गिर गया, सब है गरीब प्रभु बाकी सब शिष्य थे, बोले थे कि गुरु को भगवान के जैसे स्वीकार करना है। अभी तक तो स्वामी जी बता रहे थे कि जो कहता है कि गुरु भगवान है वो जानवर के समान है, और अभी बता रहे कि अभी दीक्षा लगे तो क्या करें, उनको भगवान के समान स्वीकार करना चाहिए। तो फिर वो सोचने लगे क्या करें, दीक्षा लेना है नहीं लेना है। तो फिर वो सब जो शिष्यगण थे वो साथ में आ गए और उन्हें कहा कि क्या करना चाहिए, स्वामी ने एक तो ऐसे बताया था पर अभी ऐसे बोल रहे कि उनको भगवान के रूप स्वीकार करना चाहिए। तो फिर एक बोले वास्तव में अभी हम उनको वैसे भी स्वीकार कर ही रहे, मतलब हम उनको भगवान नहीं मानते पर जो भी वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो अगर उनको भगवान के रूप में स्वीकार भी कर लेंगे तो क्या फर्क होगा वास्तव। उन्होंने बताया कि धोती कुर्ता पहनो, धोती कुर्ता पहने, उन्हें बाल काट दो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये भगवान कृष्ण उनकी पूजा करो, हम सब स्वीकार कर रहे हैं। तो हाँ वो बात तो सही है, पर उनके आदेश का पालन करना एक बात है और दूसरी बात है कि उनको भगवान मानना। तो ऐसे करो, तो शिष्य आता हमको प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है, प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि अगर शिष्य को संशय है तो गुरु से जाके सवाल पूछना चाहिए, तो आप जाके उनको पूछो स्पष्ट रूप से। तो हाँ ये बात सही है। तो सब गए प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने बताया कि दीक्षा के समय जो गुरु होता है वो शिष्य को भगवान, शिष्य होता है वो गुरु को भगवान जैसे मानते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने गंभीरता से कहा, और फिर वो बोले कि पर आपने हमको सिखाया है कि जो व्यक्ति कहता है कि वो भगवान है वो वास्तव में वो उचित व्यक्ति नहीं है, वो जानवर के समान, वो ढोंगी है। हाँ, पर फिर दीक्षा के समय ऐसे कैसे, प्रभुपाद जी बोले हैं कि उनको भगवान जैसे आदर देना है, भगवान नहीं मानना है, भगवान जैसे मतलब भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। तो से तैतरीय उपनिषद में श्लोक आता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, इस सब का मतलब क्या है कि वो भगवान नहीं है पर वो सब अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, भगवान की सेवा का मौका दे रहे हैं तो फिर वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। तो भगवान के अनेक प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनमें से प्रधान प्रतिनिधि जो है गुरु है। तो प्रभुपाद जी ने जानबूझ के ऐसे वचन बोले कि वो भक्त को सोचना पड़ा भक्तों को कि गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करना और गुरु को भगवान जैसे स्वीकार करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। भगवान जैसे मतलब भगवान को जैसे आदर देते हैं वैसे आदर देते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि उनको भगवान मानते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की परीक्षा नारद मुनि ने ली, वैसे ही भगवान की परीक्षा भी भगवान प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की पक्ष परीक्षा लिया करते थे। और फिर भागवत में वर्णन आता है कि ये ध्रुव महाराज की जो लीला है भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय से 13वें अध्याय तक जाती है, और फिर 14वें अध्याय में वर्णन आता है कि नारद मुनि जाके गुणगान करते हैं ध्रुव महाराज का, कहते कितने महान भक्त है कि 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। तो नारद मुनि जब ये गुणगान करते ध्रुव महाराज को, कहते नहीं तुमको पता है ना मेरे शिष्य है, वो ऐसे बताने की जरूरत नहीं। उनका भाव क्या होता है कि ध्रुव महाराज ने भक्ति की है और वो इतने महान भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक बार उनके एक शिष्य ने अमेरिका के एक शहर में, साउथ अमेरिका में, बहुत भव्य रथ यात्रा का उत्सव किया। जब उत्सव किया इस तरह से, तो उन्होंने खत से बताया प्रभुपाद जी को, और कुछ फोटो भी भेजे थे बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने कहा, तब खत में लिखा उनको कि माई हार्ट स्वेल्स विथ प्राइड टू हैव डिसाइपल्स लाइक यू, कि आप जैसे शिष्य प्राप्त करके मुझे बहुत गर्व होता है। तो ये गर्व आध्यात्मिक है। तो जैसे नारद मुनि को बड़ा आनंद हो रहा था कि ध्रुव महाराज इतने महान भक्त बन गए कि भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त कर लिया। उसी तरह से जो भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज का प्रचार करने का उत्साह इतना है, साधारणतः प्रचार करने का होता है तो अभी हम प्रवचन दे रहे तो बहुत छोटे बालक हो गए, वो सुन नहीं सकते प्रवचन को, तो वो खेलते हैं या उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, तो फिर कुछ उम्र का हो जाते तभी बुद्धि आती तभी समझ सकते हैं। पर नारद मुनि का इतना उत्साह है कि हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को जब 5 साल के थे तभी उन्होंने भक्ति में लगा दिया, पर उनको लगता है 5 साल भी बहुत ज्यादा है। तो उनका उत्साह इतना है प्रचार करने का कि क्या करते, प्रहलाद महाराज का प्रचार कब करते हैं, जब वे माँ के गर्भ में ही तभी प्रचार करते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करना चाहते हैं तो फिर तभी क्या होता है, नारद मुनि और पर्वत मुनि जानते हैं कि ये भगवान के एक महान भक्त इस भौतिक जगत में प्रकट होने वाले हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो हिरण्यकश्यपु पहाड़ पे जाके तपस्या कर रहे होते, तो वहां पे जाके दो पंछी का रूप लेते हैं, वो विष्णु बार बार बोलते रहते हैं। तो हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो जाता है, वो सोचता है कि क्या है, मैं यहाँ पे जब मैं ध्यान करने आया था विष्णु पे नहीं, मुझे तो विष्णु का वध करने के लिए ध्यान करना है। वो सोचा था कि हिरण्यकशिपु होता है उसको भी वैदिक ज्ञान पता है, पर वो यद्यपि ये जानता है कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से आए, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके मैं विष्णु को मारूंगा, ऐसे भ्रांत धारणा होती। तो वो क्रोध हो जाता है, सोचता है कि ये पंछी मुझे जप नहीं करने देंगे, ध्यान नहीं करने देंगे, तपस्या नहीं करने, तो निकल जाता है वहां से और वापस अपने महल में लौट के आता है। जब महल में लौट के आता है सोच रहा है क्या कर रहा हो, क्या करना चाहिए। और तभी जब वो अपने महल में रहता है तभी वो उसकी जो पत्नी होती कयाधु से संग करता है, और जब संग भी कर रहा था तो क्या उसके मन में जो नारद मुनि जो पंछी के रूप में आए थे वो नाम उसके मन में चल रहा होता है, और क्योंकि वो उस समय विष्णु का स्मरण कर रहा होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो प्रहलाद महाराज जो महान भक्त है उनकी जो आत्मा है वह उनके घर उनके द्वारा कयाधु के घर में प्रवेश करती है। तो भगवान का स्मरण करना इतना शक्तिशाली है कि एक असुर भी उसका स्मरण करता है तो उससे एक महान भक्त प्रकट होते। तो ये हिरण्यकश्यप की महानता नहीं है, ये भगवान के स्मरण की महानता है, और एक तरह से नारद मुनि ने उनका स्मरण करवाया था। तो भक्तनाथ ठाकुर कहते हैं कि हरिनाम बड़ा शुद्ध है, पर हम किससे हरिनाम श्रवण करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। कोई साधारण भक्त श्रवण करते हैं तो उसे थोड़ा शुद्धिकरण होगा, उसे थोड़ा भगवान का स्मरण होगा। शुद्ध भक्त स्मरण करते हैं तो उसे बहुत शुद्धिकरण होगा, उसे बहुत स्मरण होगा, और ऐसा स्मरण होगा शक्तिशाली होगा और दीर्घकाल का स्मरण होगा। तो इसीलिए अगर महान भक्तों से हम हरिनाम श्रवण करते हैं तो उसकी बहुत शक्ति होती है। और फिर बाद में हिरण्य सोचते हैं कि नहीं, मुझे वापस जाके तपस्या करनी चाहिए, वापस जाके तपस्या करनी चाहिए, तो चले आता है वो। और फिर तभी अभी कयाधु गर्भवती हो गई होती है, और तभी नारद तभी देवतागण सोचते हैं कि ये हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा असुर है और अभी उसका पुत्र होगा तो उससे और बड़ा असुर हो जाएगा, उससे कि हम ये कयाधु को गिरफ्तार कर लेंगे और फिर जब उसका पुत्र जन्म होगा तो उसको मैं वध कर दूंगा। तो ऐसा सोच के वो आते हैं, और तभी जब वो कयाधु गिरफ्तार करते वहां पे क्या होता है, हिरण्यकश्यपु होते नहीं है तो सब देवता आके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। जब लेके जा रहे होते तो इन नारद मुनि वहां पे आते, सही नारद मुनि वहां पे आते हैं, रुको रुको, ये बोलते हैं कि ये जो कयाधु के घर में जो बालक है वो महान भक्त है, वो एक महाभागवत है, और ना इंद्र और इन सब की इतनी श्रद्धा है कि तुरंत न केवल वो कयाधु को छोड़ देते हैं पर वो वास्तव में कयाधु के परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं कि इसके घर में एक महान भक्त है। और फिर कयाधु तभी बहुत डरी होती है तो उसे कहते हैं, गिनार कहते हैं कि तुम मेरे आश्रम में आके रहो मेरे साथ। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारे पति नहीं है और वो डर रही होती कि देव वापस आके आक्रमण कर लेंगे, तो मेरे आश्रम में आके रह लो। और फिर वो कयाधु उसे सेवा निवेदन करती तो कि मैं चाहती हूँ कि वास्तव में मेरा जो पुत्र है वह तब तक जन्म न हो जब तक मेरे पिता वापस ना आ जाए, पति वापस ना आ जाए। तो कहते नारद मुनि कहते तथास्तु। तो नारद उसको वास्तव में हजारों साल तक हिरण्यकशिपु तपस्या करते हैं और जब तपस्या करके वापस आता है तभी कयाधु वो वापस उनके महल में आती है और तभी प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। और फिर जब प्रहलाद महाराज 5 साल के जाते हैं तभी वो प्रहलाद महाराज से क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं, तभी हिरण्यकशिपु प्रकट होते हैं और फिर हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु वध करते हैं। तो क्या होता है, हिरण्यकशिपु वास्तव में हजारों साल तक तपस्या करते हैं पर तपस्या का भोग केवल 5 साल तक करते हैं। तो इंद्रतृप्ति का ऐसे होता है, बहुत समय तक मेहनत करो और बाद में जो फल होता है बहुत छोटे समय के लिए होता है तभी ना। पर हमें यहाँ पे क्या है, नारद मुनि वास्तव में क्या सोच रहे होते हैं कि ये जो प्रहलाद है, ये कयाधु के घर में प्रहलाद है, कयाधु को क्यों बुलाते हैं, वो सोचते हैं कि जो महान भक्त भगवान ने आत्मा भेजे है तो उसको एक भक्तिमय वातावरण में रखना चाहिए, तो इसीलिए अपने आश्रम में बुला लेते हैं। और वहां पे वो कयाधु को कृष्ण कथा सुनाते हैं। तो कयाधु जो है वो अपने पति के बाद पति से आ सकता है, अपने राज्य का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सोच रही होती है। उसके कारण क्या होती है, वो सब श्रवण करती है पर भूल जाती है। तो जब आसक्ति होती है तो ज्ञान सुनते भी है तो फिर भी भूल जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं महाभारत में जब विदुर उनको उपदेश देते हैं तो कहते हैं, विदुर को उपदेश देते हैं, अक्रूर उनको उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो सब सत्य है और आपके वचन जो है वो एक रोशनी के समान है, पर वो रोशनी कैसी है, जैसे आसमान में बिजली चमकती है वैसी रोशनी है, कुछ समय के लिए रोशनी रहती बाद में चली जाती है। तो आप जो कह रहे हो सत्य है पर मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत आसक्त हूँ दुर्योधन से। तो कयाधु जो होती है बड़ी आसक्त होती है दुर्योधन, वो आसक्त होती है, उसके कारण नारद मुनि से उपदेश सुनती है पर कुछ उसका स्मरण श्रवण करती है पर स्मरण में नहीं रहता है। पर इसके विपरीत जो उनके गर्भ में प्रहलाद होते हैं तो प्रहलाद श्रवण करते हैं और ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं और पूरा सीख लेते हैं। जब गर्व से ही बाहर निकलते हैं तो महान भक्त बन के निकलते हैं। और क्या होता है, जब वो इस तरह से भक्ति कर महान भक्त निकलते हैं तो बाद में वो शंड और अमरक के गुरुकुल में जाके सारे जो असुर पुत्र थे उनको उपदेश देते, उन सबको भक्त बना देते हैं। और वो पूछते हैं कि अरे तुमको ये सब सिखाया किसने, तो है कि नारद मुनि ने सिखाया। नारद मुनि ने सिखाया, नारद मुनि तुम कहाँ मिले थे, वो वास्तव में भागवत में वर्णन नहीं है, बोलते थे कि ऐसे जगह में मिले, मिले नहीं थे पर मैंने उनसे श्रवण किया। और फिर यहाँ पे नारद मुनि हर एक लीला में कैसे होता है, किसी भक्त का गुणगान होता है, और जब नरसिंहदेव की लीला चल रही है तो उसमें प्रहलाद महाराज का गुणगान हो रहा है। तो इसीलिए भागवत में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु जब सारे ब्रह्मांड में अत्याचार कर रहा होता है तो तभी कोई भी उसके अत्याचार का विरोध करने के लिए तैयार नहीं होता है। और नारद मुनि ये कथा है सातवें स्कंद में, नारद मुनि ये कथा युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं और नारद मुनि कहते हैं कि यहां तक कि मुझे भी हिरण्यकशिपु को प्रणाम करना पड़ता, मुझे भी हिरण्यकशिपु को के अधिकार को स्वीकार करना पड़ता था, तो ऐसी शक्ति थी उसकी। तो जब ये सुनते हैं तो क्या इसका मतलब है, तो नारद मुनि के शिष्य है प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से भयभीत नहीं है, पर नारद मुनि क्या प्रहलाद महाराज से भयभीत हो, हिरण्यकशिपु से भयभीत हो गए, नहीं वो भयभीत नहीं हुए, पर हर एक व्यक्ति को हर एक लीला में एक भक्त का किसी भक्त का गुणगान हो रहा होता है, तो उस भक्त के गुणगान में बाकी सब भक्त सहयोगी हो जाते हैं। तो इसे क्या भाव क्या होता है, ऐसे नहीं होता है कि अगर एक भक्त गुणगान कर रहे है कोई, तो आपने इतनी अच्छा सेवा की है, सब भक्त उनका गुणगान कर रहे हैं, तो हमारा मन सोचते है अरे मैंने भी सेवा की, तुमको पता नहीं है क्या। तो क्या होता है हमारे मन में कभी कभी लगता है दूसरों का गुणगान हो रहा है तो मेरा गुणगान क्यों नहीं हो रहा है। पर जो नारद मुनि है, जब वो देखते हैं कि भगवान की इच्छा है कि प्रहलाद के अद्वितीय भक्ति का गुणगान हो, तो वो भी उसमें सहभागी होते हैं। नारद मुनि भी क्या होता है, कहते हैं कि मैं भी हिरण्यकश्यप तुम्हारा अधिकार स्वीकार करता हूं। तो उससे क्या होता है कि मतलब हिरण्यकश्यप के अधिकार का विरोध करने वाला एक ही व्यक्ति होता है प्रहलाद। और ये जो भाव होता है कि ऐसे कहते हैं शिष्य जो होता है, गुरु वास्तव में अपने शिष्य से क्या चाहते हैं कि जैसे कोई पिता होता है अपने पुत्र से क्या चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनो, आप मुझसे भी बड़े बनो। जैसे पिता माता पिता के पुत्र से कहते हैं कि जो मुझे नहीं मिला है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वैसे ही गुरु की इच्छा होती है कि जो शिष्य है मुझसे भी बड़े भक्त बने। शिष्य कभी सोचते नहीं कि मैं मेरे गुरु से बड़ा भक्त बनूंगा, पर गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य महान भक्त बने, मुझसे भी बड़े भक्त बने। एक बार एक भक्त ने, एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनसे कहा, प्रभुपाद जी भक्त विनोद ठाकुर ने बंगाल और उड़ीसा में प्रचार किया, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने सारे में भारत में प्रचार किया, आपने सारे विश्व में प्रचार किया, इसीलिए आप उन सबसे बड़े हो। तो प्रभुपाद जी बोले कभी ऐसा मत सोचो कि वास्तव में जो भी मैंने किया है उनकी कृपा से किया है। तो शिष्य कभी ऐसा सोचता नहीं है कि मैं गुरु से बड़ा बन गया। और यह भाव हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के दृष्टि में जीवन में, कि जब नारद जब नरसिंहदेव उनसे कहते हैं कुछ वर मांगो, तो वो क्या कहते हैं कि वास्तव में मुझे एक वर चाहता हूँ कि मुझे अपने नारद मुनि की सेवा दो। मैं जब प्रहलाद के रूप में था, मैं जब प्रहलाद के असुर कुल में जन्मा हूँ, तो इसीलिए न तो नारद मुनि का संग मिल रहा है मुझे, न तो नारद मुनि की सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे। एवं जनन्य पतितं प्रभवानि कूपे कामाभिकामं अनुया प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसं शिवे मुनया। वो कहते हैं कि वास्तव में कहते हैं कि जो मैं असुर कुल में जन्म हुआ था और मैं भी ऐसे कार्य करता था जिससे कि मैं नरक में जाता था, पर नारद ने मुझे बचाया है, उन्होंने मुझे इतना कृपा की है, पर मैंने उनकी कुछ भी सेवा नहीं की है कि मैं तो असुर कुल में जन्मा था और मैं कभी उनका संग भी नहीं लिया उनकी सेवा, तो कृपया मुझे उनकी सेवा का मौका दीजिए। तो यह गुरु और शिष्य का आदर्श संबंध है। गुरु कभी वो अपने शिष्य के यश में बड़े आनंदित होते हैं, सहभागी होते हैं अपने शिष्य के यश में, और जो शिष्य होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे मेरे गुरु की और सेवा करनी चाहिए, और सेवा करनी चाहिए। तो यही जो मधुवन जहाँ पे है, उसके वहाँ पे जो जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो अपनी माँ को भी भगवत धाम ले जाना चाहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि मेरी माँ नहीं आएगी को लेकर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे जो शिष्य है वो इतने महान भक्त बन जाएंगे कि वो जब भगवत धाम जाएंगे और वो प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, तो फिर मैं भी भगवत धाम चला जाऊंगा। वास्तव में प्रभुपाद जी इतने महान भक्त हैं, उनके कारण ही बाकी सबको भगवत धाम के बारे में पता है कि भैया भगवत धाम क्या है ये पता भी नहीं होता था। प्रभुपाद जी की नम्रता क्या है कि मेरे शिष्य इतने महान भक्त बन जाए से कि भगवत उनको भगवत धाम जाएंगे, उनकी प्रार्थना से मैं भी भगवत धाम जाऊंगा। तो अभी हम नारद मुनि की एक अंतिम लीला के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवान कृष्ण के लीलाओं में सहभागी है। तो भगवान कृष्ण की लीला में कई बार आते हैं नारद मुनि। उनका पहला प्रवेश तो जन्म के समय में बता हुआ था है कि जब वो आके कंस को बोलते हैं भागवतम के 39वें अध्याय में दशम स्कंद के, वहां पे नारद मुनि आते हैं और इसका विस्तारित वर्णन है गोपाल चंपू में, जिसे गोपाल चंपू जो है जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा हुआ है। वो बताते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि वास्तव में अभी आपकी वृंदावन लीला का अंत करने का समय आ गया है और आप अभी जाओ मथुरा और वहां पे जाके आप कंस का वध करोगे। और नारद मुनि बताते हैं वहां पे वास्तव में कि क्या क्या करोगे आप वो सब बता देते हैं। आप इसका मैं कल आप यहाँ पे आते हुए देखूंगा, उसके बाद में इनका वध करते हुए देखूंगा, उसके बाद में ये करते हुए देखूंगा और सारी लोग और मैं बड़ा आनंद लूंगा इन सबके, और प्रभु आपने आके यहाँ पे सबका कल्याण किया है इसके लिए हम सब भक्तों की ओर से आपके बहुत कृतज्ञ हैं। तो नारद मुनि का एक और जो महत्वपूर्ण आता है, कई बार आता है भागवत में, तो उसका जो 69वां अध्याय है, 69वां 70वां अध्याय, उसमें क्या होता है, भगवान द्वारका में रह रहे हैं। तो द्वारका में रह रहे हैं तो नारद जाते हैं, तो भगवान ने तभी 16108 रानियों से विवाह किया है और उनके सबके लिए एक एक महल बनाया उन्होंने, और सबको महल बना के वहां पे वो रह रहे हैं। तो जब इस तरह से रह रहे होते हैं वो, तो नारद ने सोचते हैं कि कैसे संभव है ये, मैं देखना चाहता हूँ। जब देखने जाते हैं वो, तो दशम स्कंद में वर्णन है, उसका विस्तारित वर्णन जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में किया है। वो कहते हैं कि नारद मुनि एक घर में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान से रुक्मिणी के साथ बैठ के बैठे हैं। जैसे नारद मुनि आते हैं, स्वीकार उनका आदर से स्वीकार करते हैं, उनके पूजा करते हैं, उनके चरण वंदन करते हैं और फिर उनको प्रसाद खिलाते हैं। और फिर दूसरे महल में आते हैं तो सत्यभामा के साथ वहां पे वो घर में कुछ कार्य कर रहे हैं। तो जैसे नारद मुनि आप कब आए, तो ऐसे पता ही नहीं, यहाँ पे भी कृष्ण है, यहाँ पे कृष्ण, दो अलग ही व्यक्ति है। और ऐसे हर एक घर में आते हैं तो किसी एक घर में भगवान सुबह सुबह उठकर सुबह के प्रातः काल की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दूसरे घर में जाते हैं तो भगवान कैसे होता है, जो गृहस्थ होते हैं तो उनको, अगर वो बड़े हो गए तो उनके पुत्र, अगर पुत्र पुत्रियां बड़े हो गए तो उनके विवाह का चर्चा कर रहे होते हैं। कहीं वो कुछ ब्राह्मणों को दान दे रहे होते हैं, कहीं वो जो अपने मंत्री हैं उनके साथ राज्य का चलाना है उसके बारे में सलाह विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक घर में कृष्ण अलग अलग रूप में है, अलग 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 कृष्ण का एक विस्तार है। और यहाँ पे बताते हैं जीव गोस्वामी कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ कृष्ण एक अलग अलग व्यक्ति के रूप में है, मतलब यहाँ पे कृष्ण है, दूसरे एक महल में कृष्ण, तीसरे एक महल में कृष्ण, इतना ही नहीं है। पर जब एक महल से दूसरे महल में जब नारद मुनि जाते हैं तो वहां पे हर एक महल में समय भी अलग है। एक महल में सुबह चल रहा है, दूसरे महल में दोपहर चल रहा है, तीसरे महल में शाम चल रहा है, चौथे महल में रात चल रहा है, तीसरे पांचवे महल में प्रातः काल चल रहा है। और ऐसे नहीं कि नारद मुनि को अभी यहाँ एक महल से दूसरे महल से जाने को पैदल चलते हुए जाना है, 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, नहीं, नारद मुनि इच्छा से जाते हैं वहां भैया। तो क्या कहते हैं कि भगवान न केवल जगह के सीमा से मर्यादित नहीं है, वह समय के समय से सीमा में मर्यादित नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आप अगर इस समय यहाँ पे प्रवचन के लिए बैठे हो तो हम सब भगवान का कथा कर रहे हैं, अभी 2:30 बजा है तो हम सब कथा कर रहे हैं, तो इसी अगर हम सब अभी अपने अपने घर में इसी समय नहीं हो सकते। पर उतना ही नहीं कि अगर यहाँ पे 2:30 बजा है तो अपने घर में भी 2:30 बजा है। अगर वो भारत में ही है, अमेरिका में है तो समय थोड़ा अलग होता है, पर अगर बेलगांव में ही घर है तो समय एक ही होता है। पर भगवान के सब महल द्वारका में ही थे, पर एक महल में सुबह थी, दूसरे महल में दोपहर थी, तीसरे महल में रात थी और चौथे महल में बिल्कुल प्रातःकाल था। तो ये कैसे संभव है? नारद मुनि जब ये देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान आपकी शक्ति जो है ये अचिंत्य है, कि आप समय और जगह इस सब के पाबंदी से बिल्कुल मुक्त हो और आपके स्वेच्छा से जो भी आप करना चाहे कर सकते हो। और जो मैं देख रहा हूँ ये आश्चर्यजनक है, पर फिर भी ये आश्चर्यजनक नहीं भी है, क्योंकि ये आश्चर्यजनक इसलिए है, कोई साधारण व्यक्ति ये कर नहीं सकता है। पर ये आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तव में आपके लिए क्या असंभव है। तो आपकी जो लीला है यह इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय है, ऐसे न पहले कभी हुई थी न पहले उसके बाद होगी। और आपने ऐसी लीला किस लिए की है, जिससे कि आप सारे ब्रह्मांड को आपके स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, और इससे जब आप स्मरण करेंगे आपका, तो उन सबका उद्धार हो जाएगा। नारद मुनि इस तरह से भगवान का प्रणाम करके बहुत सुंदर गुणगान करते हैं और फिर वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो ये नारद मुनि है, वे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नारद मुनि का विशेषता क्या है, वो बहुत प्रचार करने में माहिर है, सब जगह जाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, जहां पे भी जरूरत है ब्रह्मांड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी में प्रचार करते हैं, स्वर्ग लोक में प्रचार करते हैं, देवलोक में प्रचार करते, सब जगह जाके प्रचार करते हैं। एक बार तो एक राजा होता है, उसका नर्क में जाते हैं तो भगवान नर्क में जाके प्रचार करते हैं, नर्क से उसका उद्धार करते, विस्तारित कहानी है वो। पर महत्वपूर्ण यह है कि नारद मुनि का करुणा का जो भाव है वो बहुत अद्वितीय है। और प्रभुपाद जी जो थे, वह उनका वही भाव था कि जो करुणा का भाव था, जो 70 साल की उम्र में वे प्रवास करने लग गए और 14 बार सारे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने, क्योंकि जिस नारद की करुणा थी वैसे उनकी भी करुणा थी। और वो सोचे देखिए भगवान के भक्ति का ज्ञान देकर सबका उद्धार हो जाए। तो अभी हम एक प्रार्थना है जो भगवान के महान भक्तों को की जाती है, तो ये नारद मुनि के लिए उल्लेखित है प्रार्थना, साथ साथ ये प्रभुपाद जी के लिए भी उल्लेखित है, सब महान भक्तों के लिए। मैं प्रार्थना का अर्थ पहले बोलता हूँ, फिर हम प्रार्थना दोहराएंगे और फिर हम प्रवचन को विराम देंगे। तो ये प्रार्थना है, संकीर्तनानंद रस स्वरूप, संकीर्तन आनंद, जो भगवान के कीर्तन का आनंद है, वह महान भक्त जो होते हैं इस आनंद का रस स्वरूप है, वह इसके मूर्तिमान रूप है, वह आनंद ले रहे हैं और ये आनंद बांट रहे हैं। संकीर्तनानंद रस स्वरूप प्रेम प्रदान है खलु शुद्ध चित्ते, वो क्या करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं सबको। और खलु, खलु मतलब जरूर, उनका चित्त जो है शुद्ध है, उनकी और कोई इच्छा नहीं है, सबको उनको प्रेम प्रदान करके उद्धार करना है। और ऐसे एक भक्त नहीं, जो परंपरा में अनेक गुरु है, बड़ी लंबी परंपरा है, बहुत से महान भक्त हो चुके हैं, सर्वे महंता, ये सब महान भक्त है। किल कृष्ण तुल्य, कितने महान है, कृष्ण तुल्य, जो आशीर्वाद हमें भगवान कृष्ण के संग से मिल सकते हैं, वे सारे आशीर्वाद महान भक्तों के संग से मिल सकते हैं। और वो क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करके संसार लोकान परितारयन्ति, परितारयन्ति, सबका वह उद्धार करते हैं। तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए, संकीर्तनानंद रस स्वरूप,
कीर्तनानंद रस स्वरूप,
संकीर्तनानंद रस स्वरूप,
कीर्तनानंद रस स्वरूप,
संकीर्तनानंद रस स्वरूप,
कीर्तनानंद रस स्वरूप,
प्रेम प्रदानै खलु शुद्ध चित्तै, प्रेम प्रदानै खलु शुद्ध चित्तै, प्रेम प्रदानै खलु शुद्ध चित्तै, सर्वे महंता किल कृष्ण तुल्या,
सर्वे महंता किल कृष्ण तुल्या,
सर्वे महंता किल कृष्ण तुल्या,
महंता किल कृष्ण तुल्या,
सर्वे महंता किल कृष्ण तुल्या,
महंता किल कृष्ण तुल्या,
संसार लोकान परितारयन्ति, संसार लोकान परितारयन्ति, संसार लोकान परितारयन्ति,
परितारयन्ति।
एक बार पूरा श्लोक बोले, संकीर्तनानंद रस स्वरूप,
कीर्तनानंद रस स्वरूप,
प्रेम प्रदानै खलु शुद्ध चित्तै,
प्रदानै खलु शुद्ध चित्तै,
सर्वे महंता किल कृष्ण तुल्या,
महंता किल कृष्ण तुल्या,
संसार लोकान परितारयन्ति,
लोकान परितारयन्ति।
नारद मुनि की, द्वादश महाजन की, नील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।